एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
प्रभु यीशु है धन्य महान, मेरा जीवन है तेरे साथ, सिजदा मैं करूं तेरी,
तू।
यीशु है महान, प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान। इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है ना, प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान। पवित्रता की भावना लेकर करूं तुझको प्रणाम, तेरे नाम की बड़ाई में करूं मन में लूं तेरा नाम, पवित्रता की भावना लेकर जीवन का धन्य है मेरे दाता, कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं ये समझ में न आता, दान दिया तूने अपने जीवन का धन्य है।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता, हमारे मनों को तू खोल दे और हमें तेरे वचनों को समझने के लिए मदद कर। मेरे हरेक श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तो बहुतायत से तेरे वचनों के द्वारा आशीषित कर और मेरे संग पिता तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्यारे श्रोतागण, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर का सृजनात्मक वचन। बाइबल में जो लिखा है वह अत्यंत सरल है। परमेश्वर के सृजनात्मक आदेश पर आकाश एवं पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है तत्काल प्रकट हुए। निर्गमन 20 का 11। मात्र 6 दिनों ने बेडोल और सुनसान से पूरी तरह से विकसित प्राणियों और तरह तरह के हरे भरे पौधों से भरे हुए ग्रह में बदलते हुए देखा। हमारा ग्रह निर्मल, शुद्ध, चमकीले रंग, आकार और सुगंध से सुशोभित था, जिसे उत्तम सुंदरता और कार्य करने की बारीकियों की सटीकता के साथ संजोया था। फिर परमेश्वर ने विश्राम किया, जश्न मनाने और आनंद लेने के लिए कार्य विराम किया। हमेशा उन 6 दिनों की सुंदरता और वैभव को उसके विराम के कारण याद किया जाएगा। आइए बाइबल में आरंभ के विवरण पर एक तेज नजर डालें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी जल और अंधकार से ढकी हुई थी। पहले दिन परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश को अलग किया और प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल के बीच एक अंतर किया। पृथ्वी पर फैले हुए जल को वायुमंडल से अलग कर परिस्थितियों को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने जल को एक जगह इकट्ठा कर भूमि और सागर की स्थापना की। परमेश्वर ने नग्न तटों, पहाड़ियों और घाटियों को वस्त्र पहनाए। तब पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। उत्पत्ति 1:12। चौथे दिन चिन्हों व नियत रीतियों और दिन व वर्षों के लिए परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों की स्थापना की। सूर्य को दिन पर और चंद्रमा को रात पर प्रभुता करनी थी। उत्पत्ति 1:14-16। परमेश्वर ने पांचवें दिन पक्षियों और जल जंतुओं को रचा। उसने उनकी एक एक जाति के अनुसार सृष्टि की। उत्पत्ति 1:21। यह एक संकेत है कि प्राणी जो उसने बनाए हैं, वे निरंतर अपनी जाति के अनुसार प्रजनन करेंगे। छठे दिन परमेश्वर ने उच्च श्रेणी के पशु जीवन की सृष्टि की। उसने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। उत्पत्ति 1:24। फिर सृष्टि के परम कार्य के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने वह सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति 1:31। भजनकार ने लिखा, यहोवा के वचन से आकाशमंडल और उसके सारे गण उसकी मुंह की श्वास से बने। भजन संहिता 33:6 में। इस सृजनात्मक शब्द का संचालन कैसे हुआ? उत्पत्ति के शब्द परमेश्वर ने कहा, सृष्टि के 6 दिनों की आलिशान घटनाओं के लिए जिम्मेदार शक्तिमान दिव्य आदेश का परिचय देते हैं। उत्पत्ति 1:3, 6, 9, 12, 14, 20 और 24। प्रत्येक आदेश एक सृजनशील ऊर्जा के साथ दिया गया, जिसने एक बेडौल और सुनसान ग्रह को जन्नत में बदल दिया। उसने कहा और वह हो गया। जब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में वैसा ही हो गया। भजन संहिता 33:9। वास्तव में सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। इब्रानियों 11:3। यह सृजनात्मक शब्द पूर्वस्तित्व तत्व पर निर्भर नहीं था, एक्स निहिलो। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। इब्रानियों 11:3। हालांकि कभी कभी परमेश्वर ने पूर्वस्तित्व तत्व का उपयोग किया। आदम और पशुओं को भूमि से रचा गया और हवा को आदम की पसली से रचा गया। उत्पत्ति 2:7, 9 और 22। अंतत परमेश्वर ने सभी तत्वों की रचना की। उत्पत्ति में लिखे सृष्टि के विषय में अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या सृष्टि की दो कहानियां जो बाइबल की प्रथम पुस्तक में पाई जाती हैं, एक दूसरे के विरोधाभास हैं या वे सुसंगत हैं? क्या सृष्टि के दिन शाब्दिक हैं या वे लंबी समय की अवधि को दर्शाते हैं? क्या आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं वास्तव में 6000 वर्ष पूर्व बनाए गए? बाइबल में सृष्टि के दो वर्णन, पहला उत्पत्ति 1:1-2:3 और दूसरा उत्पत्ति 2:4-25 दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। पहला विवरण सभी वस्तुओं की सृष्टि को कालानुक्रमिक क्रम में वर्णन करता है। दूसरा विवरण इन शब्दों से आरंभ होता है कि वंशावली यह है एक अभिव्यक्ति जो उत्पत्ति में पारिवारिक इतिहास का परिचय देती है। इसे हम तुलना कर सकते हैं उत्पत्ति 5:1, 6:9 और 10:1 से। यह विवरण सृष्टि में मनुष्य के स्थान का वर्णन करता है। यह पूरी तरह से कालानुक्रमिक नहीं है, परंतु यह प्रकट करता है कि सब चीजों ने मनुष्य के लिए वातावरण तैयार करने में मदद की। पहले की तुलना में यह आदम और हवा की सृष्टि और वातावरण जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में प्रदान किया था के विषय में अधिक जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यह हमें मानवता के स्वभाव एवं दिव्य शासन की सूचना देता है। यदि सृष्टि के ये दो विवरण शाब्दिक एवं ऐतिहासिक रूप से स्वीकार कर लिए जाएं, तभी यह शास्त्र के शेष भाग से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। बाइबल में सृष्टि के दिनों का विवरण शाब्दिक 24 घंटे की अवधि का संकेत देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुराने नियम में परमेश्वर के लोग समय को सांझ और भोर के भाव से नापते थे, उत्पत्ति 1:5, 8, 13, 9, 23 और 31 जो शाम या सूर्यास्त के साथ शुरू होने वाले प्रत्येक दिन का वर्णन करता है। लेव्यवस्था 23:32 व्यवस्था विवरण 16:6। यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि इस भाव का अर्थ उदाहरण के लिए लेव्यवस्था में 24 घंटे के एक शाब्दिक दिन का है और उत्पत्ति में हजारों या लाखों वर्ष का। उत्पत्ति 1 में दिन शब्द का इब्रानी अनुवाद योम है। जब योम के साथ एक स्पष्ट अंक जुड़ा होता है तब हमेशा उसका अर्थ एक शाब्दिक 24 घंटे का दिन होता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 7:1 और निर्गमन 16:1 को हम देख सकते हैं। यह एक और संकेत है कि सृष्टि का विवरण शाब्दिक 24 घंटे के दिन को दर्शाता है। 10 आज्ञाएं एक और साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं कि उत्पत्ति के सृष्टि विवरण में शाब्दिक दिन शामिल है। 4 आज्ञा में परमेश्वर कहता है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें तू किसी भांति का काम काज ना करना, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। निर्गमन 20:8-11। संक्षेप में परमेश्वर सृष्टि की कहानी फिर से सुनाता है। प्रत्येक दिन योम सृजनात्मक गतिविधि से भरा हुआ था और फिर सबत ने सृष्टि के सप्ताह का अंत किया। इसलिए 24 घंटे शब्द का दिन सृष्टि के शाब्दिक सप्ताह को स्मरण कराता है। 4 आज्ञा अर्थहीन होगी यदि प्रत्येक दिन को खींचकर युगों में बदल दिया जाए। वे जो मिलता है दूसरा पत्रस 3:8 का उल्लेख करते हैं कि प्रभु के लिए एक दिन हजार वर्ष के बराबर है। यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि सृष्टि के दिन शाब्दिक 24 घंटे के नहीं थे, लेकिन इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि वही पद हजार वर्ष एक दिन के बराबर है के साथ अंत होता है। जो सृष्टि के दिनों को हजार वर्षों या लाखों या यहाँ तक कि अरबों वर्षों की विशाल अनिश्चित अवधि समझते हैं, वे परमेश्वर के वचन की वैधता पर सवाल उठाते हैं। जिस प्रकार सांप ने हवा को सवाल उठाने का प्रलोभन दिया, आकाश क्या है, कुछ लोग हैरान हैं, और हम समझ सकते हैं उन पदों से जो यह कहते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति 1:1, 2:1 और 20:11, और यह कि उसने 6000 वर्ष पूर्व सृष्टि के सप्ताह के 4 दिन सूरज चांद और सितारों को बनाया, उत्पत्ति 1:14-19। क्या उस समय सभी खगोलीय मंडल को अस्तित्व में लाया गया था? सृष्टि सप्ताह में उस आकाश को शामिल नहीं किया गया था जिसमें परमेश्वर अनंत काल से रहता है। उत्पत्ति 1:2 का आकाश शायद हमारे सूर्य और ग्रहों की प्रणाली को संदर्भित करते हैं। वास्तव में पृथ्वी मसीह की पहली सृष्टि के बजाय संभावित रूप से अंतिम हो सकती है। बाइबल परमेश्वर के पुत्रों का शायद सभी निष्पाप दुनियाओं के आदमों का ब्राह्मण के किसी कोने में परमेश्वर के साथ बैठक का चित्रण करती है। अय्यूब 1:6-12 में हम यह पाते हैं। अभी तक अंतरिक्ष जांचों ने कोई अन्य बसे हुए ग्रहों की खोज नहीं की है। स्पष्ट रूप से वे विशाल अंतरिक्ष में स्थित होंगे, हमारे पाप प्रदूषित और मंडल की पहुंच से परे, पाप के संक्रमण स्पर्श से अलग। क्या परमेश्वर ने सृष्टि कार्य समाप्त कर दिया है? सृष्टि पूरण इस कथन से अंत होता है। यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, उत्पत्ति 2:1 में। नया नियम इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर के द्वारा सृष्टि जगत की उत्पत्ति के समय ही समाप्त हो गई, इब्रानियों 4:3। क्या इसका अर्थ यह है कि मसीह की रचनात्मक शक्ति अब सक्रिय नहीं है? सृजनात्मक शब्द अब भी विभिन्न तरीकों से सक्रिय है। मसीह और उसका सृजनात्मक शब्द को हम पाते हैं बाइबल में। नया नियम में भी हम इसके बारे में पाते हैं। सृष्टि के 4,000 साल बाद एक सूबेदार ने मसीह से कहा, केवल मुख से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मत्ती 8:8। जिस प्रकार उसने सृष्टि में किया, यीशु ने कहा और वह सेवक चंगा हो गया। यीशु की संसारिक सेवकाई में वही सृजनात्मक शक्ति ने जिसने आदम के बेजान शरीर में जान डाली थी, मृतकों को जीवित किया एवं उन पीड़ितों को जिन्होंने उससे सहायता मांगी उन्हें नया जीवन दिया। यीशु मसीह का सृजनात्मक शब्द आज ना तो यह संसार और ना ही ब्राह्मण स्वयं की अंतर्निहित शक्ति से काम करते हैं। वह परमेश्वर जिसने उनकी सृष्टि की उन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखता है। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। भजन संहिता 147:8-9 में हम यह पाते हैं और इसको हम तुलना कर सकते हैं अय्यूब 26:7-14 में जो मिलता है उससे। वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। कुलुसियों 1:17, आइए हम इसे तुलना करें फिर से इब्रानियों 1:3 से। हम अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका के कार्य के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक आंख का झपकना एक प्रेमी सृष्टिकर्ता की देखभाल की बात करता है। हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा कि लिखा है प्रेरितों के काम 27:28 में। परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति न केवल सृष्टि में बल्कि छुटकारे और पुनर्स्थापन में भी शामिल है। परमेश्वर शुद्ध मन उत्पन्न करता है, यशायाह 44:21, भजन संहिता 51:10। हम उसके द्वारा सृजे गए हैं। पौलुस कहता है, हम यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, इफिसियों 2:10। यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। परमेश्वर जिसने ब्राह्मण में कई आकाश गंगाओं को फैलाया है, उसी शक्ति का उपयोग कर अति अपमानित पापी को अपनी ही छवि में फिर से बनाता है। यह मुक्ति बहाल करने की शक्ति मानव जीवन को रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है। वह शक्ति जिसने मूल रूप से आकाश एवं पृथ्वी को बनाया, अंतिम न्याय के पश्चात फिर से बनाएगी एक नई और शानदार सृष्टि, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, जिसे हम पढ़ते हैं यशाया 65 का 17 से 19 में और प्रकाशित वाक्य का 21 और 22 अध्याय में। वही परमेश्वर जिसने अपने शक्ति से आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया और अंत में नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा, आज हमें मसीह में नया बनाना चाहता है कि हम सर्वदा जीवित रहें। आइए हम वैसे परमेश्वर की उपासना करें और अपना जीवन को संपूर्ण तौर से उसे समर्पण कर दें कि वह हमें नया बनाकर अपने साथ हमेशा के लिए रखे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, हम सबों को तू स्वीकार कर, हम सबों को तू आशीषित कर पिता, और तेरे वचनों से भर दे और तेरे रास्ता में चला पिता। मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो, उन्हें तू बहुतायत से आशीष दे, उन्हें उनके परिवारों को आशीष दे और हम सबों को तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर पिता। हमारे अंदर तेरा पवित्र आत्मा दे और हमें नया बना कि हम तेरे चरित्र को हम दर्शाएं और तेरे साथ जिए, हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार कर पिता और हमें तेरे लिए बचा ले। कभी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।